हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अमन और आंशी आर्टिस्टिक के सेकंड फ्लोर पर मिस्टर सिंह के ऑफिस में मौजूद थे। वहाँ मिस्टर सिंह और आंशी काफी इनफॉर्मली बात कर रहे थे। बातों बातों में आंशी ने कल होने वाले मेले में जाने की बात कही। उसके मुंह से मेले में जाने की बात सुनकर अमन की भौंएं तन गईं। वो कुर्सी से उठा और जल्दी जल्दी फाइल समेटने लगा। चार पांच फाइल को एक तरफ रखने के बाद उसने आंशी की तरफ देखकर कहा, मिस जिंदल, अभी के अभी इन सभी फाइल्स के साथ मेरे केबिन में पहुंचो, और हाँ, एक मिनट की भी देरी नहीं होनी चाहिए। उसकी आवाज सख्त थी। अमन ने इतना ही कहा और फिर वहां से तेज कदमों से चलते हुए लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगा। उसके बर्ताव में अचानक आए इस बदलाव को देखकर मिस्टर सिंह और आंशी एक दूसरे की तरफ हैरानी से देख रहे थे। आंशी जल्दी जल्दी उन फाइल्स को उठाने लगी। अचानक से इन्हें क्या हो गया? पहले तो काफी नॉर्मली बात कर रहे थे और फिर सडनली मूड चेंज। ऐसे लग रहा है जैसे किसी रोबोट में चाबी भर दी गई हो और वो फिर से उसी जोश के साथ काम करने लगा हो, आंशी फाइल उठाते हुए बोली। आप बातें बनाने की बजाय जल्द से जल्द ऑफिस में पहुंचेंगी तो सही रहेगा। लगता है उन्हें हमारा इस तरह फ्रेंडली होकर बात करना पसंद नहीं आया, मिस्टर सिंह बुझी आवाज में बोले। आंशी ने उनकी बात पर हामी भरी और उन फाइल्स को उठाकर ऊपर के फ्लोर पर जाने लगी। कुछ ही मिनटों में वो अमन के केबिन के आगे थी। वहीं अमन अपने केबिन में परेशान बैठा था। उसने अपने मन में कहा, जानता हूँ वहाँ बॉम्ब होने की श्योरिटी नहीं है, फिर भी ये वहाँ क्यों जा रही है? अगर वहाँ सच में ऐसा कुछ हुआ तो इसकी जान को खतरा हो सकता है। इसे कैसे भी करके वहाँ जाने से रोकना होगा, पर ये मेरी बात क्यों सुनेगी? इसे तो हमेशा अपनी जिद करनी होती है। अमन अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में उलझाकर बैठा था। वो गहरी सोच में होता तो इसी तरह का पोजीशन बनाकर बैठता था। आंशी के डोर लॉक करने की आवाज़ सुनकर अमन का ध्यान टूटा। उसने बाहर से चिल्लाकर कहा, कैन आई कम इन सर? हाँ, जल्दी आओ, अमन ने जवाब दिया। आंशी केबिन के अंदर आई और उन फाइल्स को अमन के सामने टेबल पर रख दिया। क्या मैं जा सकती हूँ? फाइल्स रखते ही उसने पूछा। नहीं, मुझे तुमसे और भी काम है, अमन ने जवाब दिया और आंशी को अपने सामने पड़ी कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। आंशी वहां बैठ गई। उसके बैठते ही अमन ने फिर कहा, तुम्हें यहाँ काम करते ज्यादा टाइम नहीं हुआ, तभी तुम यहाँ के रूल्स और रेगुलेशन से अनजान हो। आगे से ऑफिस के किसी भी एम्प्लॉय के साथ फैमिलियर होने की कोशिश मत करना। अच्छा, तो आपको उस बात का बुरा लगा कि मैं मिस्टर सिंह के साथ इतने अच्छे तरीके से बात क्यों कर रही थी? कितने जलकुकड़े हो आप? आंशी को एहसास हुआ कि उसने क्या कह दिया, तो उसने जल्दी से अपने मुंह पर दोनों हाथ रख दिए। नहीं नहीं, अब मुंह पर हाथ रखने की क्या जरूरत है? कौन सा तुम सोच समझकर बात करती हो, अमन ने सख्त आवाज में कहा। सो सॉरी, ठीक है, मैं कल मिस्टर सिंह के साथ फेयर में नहीं जाऊंगी और ना ही उनके घर किसी लंच पार्टी के लिए। इसका मतलब तुम कल फेयर में नहीं जा रही? ये आपको किसने कहा कि मैं कल फेयर में नहीं जा रही? मैंने ये कहा कि मैं मिस्टर सिंह और उनकी फैमिली के साथ नहीं जाऊंगी। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं वहां जाना ही कैंसिल कर दूंगी, आंशी फाइल देखते हुए बात कर रही थी। लेकिन तुम कल बाहर नहीं जाओगी, अमन के कहते ही आंशी ने उसकी तरफ देखा। उसने कहा, और आप कौन होते हो मुझे वहां से जाने से रोकने वाले? कल संडे है और ऑफिस की छुट्टी है। मैं कल के दिन कुछ भी करूं, आपको उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हाँ, मुझे कोई मतलब नहीं होना चाहिए और ना ही मुझे कोई मतलब है। मैंने तुम्हें ये कहने के लिए बुलाया है कि कल मैं तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा काम देने वाला हूँ। उस एक्स्ट्रा काम की सैलरी तुम्हें बोनस के रूप में मिल जाएगी, तो कल तुम फेयर में जाने के बजाय मेरा काम करोगी। अमन ने काम के बहाने आंशी को मेले में जाने से रोकने की कोशिश की। उसके बात सुनकर आंशी हल्का सा हंसी और फिर बोली, मुझे वहां जाने से रोकने के लिए बहाना काफी अच्छा सोचा है आपने। ठीक है, मैं आपका बताया काम कर दूंगी। वैसे भी मैंने फेयर में जाना शाम को प्लान किया है, तो बताइए क्या काम है? आंशी के पूछने पर अमन चुप हो गया। उसने आंशी को रोकने के लिए बहाना तो बता दिया था, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे क्या काम दे। उसे चुप देखकर आंशी ने कहा, क्या हुआ, काम याद नहीं आ रहा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अमन ने हड़बड़ाकर जवाब दिया। एक्चुअली यहाँ एक नया होटल बना है, उसके इंटीरियर का काम हमें मिला है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम टीम के साथ वहाँ जाओ और अपने आइडियाज की एक फाइल बना कर दो। तुमने ही कहा था ना कि अब तक तुम्हें कोई अच्छा काम नहीं मिला जिसके जरिए तुम खुद को प्रूव कर सको। लो, मैंने तुम्हें काम दे दिया, अब तुम्हारी बारी है खुद को प्रूव करने की। ठीक है, लेकिन वो होटल कहाँ है? वो होटल चंडीगढ़ से बाहर आउटसाइड एरिया में बना है। ये विजिटर्स के लिए बनाया गया है, जो कि एक फार्म हाउस की तरह है। ये एक रिजॉर्ट की तरह है, तो इंटीरियर भी उसी हिसाब से होगा। टीम वहाँ लगभग 2 से 3 दिन तक रुकेगी, अपनी पैकिंग कर लेना। हाँ, बहाना काफी अच्छा बनाया है मुझे रोकने के लिए, लेकिन मैं नहीं जा रही। मैंने कहा ना, मुझे फेयर्स बहुत पसंद हैं और मैं कल जाकर रहूंगी। आपने जो काम बताया है उस पर मैं परसों चली जाऊंगी। आंशी बच्चों की तरह जिद कर रही थी। वो अपनी जगह से उठकर बाहर जाने लगी। उसे रोकने के लिए अमन अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसके पीछे गया। उसने आंशी का हाथ पकड़कर उसे रोका। तुम यहाँ की एम्प्लॉई हो और अपने बॉस को किसी काम के लिए मना नहीं कर सकती। अगर तुमने ऐसा किया तो क्या आप मुझे जॉब से निकाल देंगे? आंशी उसकी बात बीच में काट कर बोली, ठीक है, निकाल दीजिए। मुझे भी ऐसी जगह काम नहीं करना जहाँ का बॉस जब देखो किचकिच करता रहता है, अपनी एम्प्लॉई पर गुस्सा करता है और उसे अपने मन की इच्छाओं को पूरा करने से रोकता है। लेकिन मैंने ये सब कब किया? अमन ने हैरानी से कहा। ये सब तो नहीं किया, लेकिन आप मुझे जबरदस्ती ऐसा काम दे रहे हैं जो मेरा नहीं है। मुझे ये काम नहीं करना। इसके बदले आपको मुझे काम से निकालना है तो निकाल दीजिए, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पर जो कंपेंसेशन बनता है वो भी दे दीजिएगा। आंशी ने अमन का हाथ अपने हाथ से अलग किया और वहाँ से बाहर चली गई। ऑफिस आवर्स खत्म हो चुके थे। ज्यादातर एम्प्लॉयज अपने घर के लिए निकल चुके थे। उस फ्लोर पर अमन और आंशी के अलावा और कोई नहीं था। आंशी अपने डेस्क पर आई और बैग उठाकर वहाँ से जाने लगी। तभी अमन तेज कदमों से चलकर उसके पीछे आया। उसने आंशी का हाथ पकड़कर फिर उसे जाने से रोका। ये क्या बदतमीजी है मिस्टर कपूर? आंशी उसकी तरफ गुस्से में पलटी। अमन ने जल्दी से उसका हाथ छोड़ दिया। आंशी गुस्से में उसे घूर रही थी। गलत मत समझना, मैं बस ये कहना चाहता था कि अकेले घर मत जाओ, उस गुंडे के आदमी अभी भी तुम्हारे पीछे पड़े हैं। अमन के भावों और बोलने के तरीके से साफ था कि उसने आंशी का हाथ गलत इरादे से नहीं पकड़ा था। उसका चेहरा देखकर आंशी का गुस्सा पल में काफूर हो गया। उसने सिर हिलाकर उसकी बात पर हामी भरी। तुम यहीं रुको, मैं गाड़ी की चाबी लेकर आता हूँ, कहकर अंदर चला गया। उसके जाने के बाद भी आंशी उसके बारे में सोच रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, कोई इंसान एनी टाइम इतना काम कैसे रह सकता है? क्या इसके लिए भी इन्हें अलग से ट्रेनिंग दी जाती है? अमन गाड़ी की चाबी लेकर बाहर आ गया था। वो आगे आगे चल रहा था जबकि आंशी उसके पीछे आ रही थी। वो उसे अजीब नजरों से देख रही थी। कहीं ये कोई काला जादू तो नहीं करता जिसकी वजह से लड़कियां इसके जादू से बच नहीं पातीं? आंशी ने खोए हुए अंदाज में अमन की तरफ देखा।
अंदर बैठने के बाद अमन ने गाड़ी का हॉर्न बजाया जिससे आंशी का ध्यान टूटा। वो झट से आकर उसके पास बैठ गई। आप ये जो रोज मुझे प्राइवेट सर्विस दे रहे हैं, इससे ऑफिस वाले गलत भी समझ सकते हैं। कहीं उन्हें ये तो डाउट नहीं होगा कि हम दोनों का अफेयर चल रहा है? आंशी की बात सुनकर अमन जोर से खांसा। ऐसा कुछ नहीं है। सबको पता है कि मैं लावण्या के साथ रिलेशनशिप में हूँ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो चुड़ैल ही मिली थी इसे प्यार करने के लिए। ऐसा अक्सर क्यों होता है कि एक अच्छी लड़की को अच्छा लड़का नहीं मिलता, तो अच्छे लड़के को अच्छी लड़की? अब हम दोनों को ही देख लो, मुझे वो जल्लाद मिला तो इसे ये डायन, आंशी ने बड़बड़ा कर कहा। अमन को उसकी बात सुनाई दे गई थी, लेकिन उसने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी जिसे वो मुश्किल से रोकने की कोशिश कर रहा था। अमन और आंशी घर जा रहे थे, तब रास्ते में अमन की नज़र फिर से उस फेयर के एडवर्टाइजमेंट पर पड़ी। उसे देखकर उसके चेहरे के भाव गंभीर हो गए। उसने एक नज़र आंशी की तरफ देखा। अमन ने आंशी से कहा, कल ज्यादातर लोग बिजी हैं, इस तरह के फेयर्स चंडीगढ़ में होते रहते हैं। आई प्रॉमिस नेक्स्ट टाइम मैं खुद तुम्हें अपने साथ वहाँ घुमाने के लिए लेकर जाऊँगा। इस बार के लिए मेरी बात मान लो। नहीं, मुझे आपकी बात नहीं माननी। और आपने उस तरह मेरा हाथ क्यों पकड़ा था? मुझे रोकने के लिए मुझे आवाज़ भी तो लगा सकते थे ना? आगे से इस तरह मेरा हाथ मत पकड़ना, मुझे नहीं अच्छा लगता है कि कोई मुझे टच करे। जल्दबाजी में कुछ समझ नहीं आया? बाकी तुम अच्छे से जानती हो कि मेरे इंटेंशन गलत नहीं थे। आंशी की बातों ने अमन का मूड बिगाड़ दिया। उसे उस पर गुस्सा आ रहा था। आंशी को भी एहसास हुआ कि उसे अमन से इस तरह नहीं कहना चाहिए था। दोनों के बीच एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। पूरे रास्ते अमन और आंशी ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा। आंशी का घर आते ही अमन ने गाड़ी रोक दी। आंशी भी बिना बाय बोले अंदर जाने लगी। ये क्या किया तुमने आंशी? वो तुम्हारे बारे में इतना सोचता है और तुमने उससे, जबकि उसने मुझे सच में गलत इरादे से नहीं टच किया था। मैं इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हूँ? आंशी अंदर जाते वक्त सोच रही थी। उसे अपने शब्दों पर पछतावा हो रहा था। वहीं अमन ने उसे जाते हुए देखा तो खुद से कहा, मैं क्यों उसकी परवाह कर रहा हूँ? उसे जहाँ जाना है जाए ना। उस फेयर में बहुत से लोग इकट्ठे इकट्ठा होंगे, मुझे उनकी फिक्र करनी चाहिए, ना कि इसकी, जो एक गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड है। अब अगर उस फेयर में ये मुझे मिली और कोई बॉम्ब सच में हुआ तो इसके सिर पर लाकर मारूंगा। फिर पता चलेगा कि मैंने इसे गलत इरादे से टच नहीं किया था और सच में मेरा इंटेंशन इसको प्रोटेक्ट करना ही है, ना कि इसकी तरह फालतू की इधर उधर की बातें करना। अमन गुस्से में गाड़ी चला रहा था। आंशी की बातों ने उन्हें सच में हर्ट किया था, तो वहीं आंशी अपने घर पर उस बारे में सोचकर परेशान थी। 4 स्टार्स।